आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से सातवां स्कंद अध्याय 9 प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना और श्लोक संख्या 26। क्वाहम रजह प्रभवा ईशा तमहा अधिके अस्मिन् जातः सुरा इतरा कुले सुर इतरा कुले क्वा तव अनुकंपा न ब्रह्मणा न तु भवस्य न वै रमायः यत् मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हु इज ट्रांसलेटिंग बैक साइड? आप लोग आगे आ जाएं, हमारे आश्रम से भगत लोग पीछे आते हैं, धीरे धीरे आगे आ जाइए। उधर अंग्रेजी में अनुवाद होगी तो आप जो हिंदी जानते हैं आगे जाएं, पीछे अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगी। क्वाहम रजा प्रभव ईस तमोधिकेस्मिन् क्वाहम रजा प्रभव इस्मतमोदिकेस्मिन् जात सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। क्वाहम रजा प्रभव ईस तमोधिकेस्मिन् जात सुरेतर कुले कोतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। क्वाहं रजः प्रभव इस तमोधिकेस्मिन् जात सुरेतर कुले तव क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्कर प्रसाद। मिंबार का लेडीज क्वा कहाँ अहम मैं रज प्रभव रजोगुणी शरीर में उत्पन्न होकर ईशा हे भगवान तमहा तमोगुण अधिके बढ़कर अस्मिन इस जातः उत्पन्न कुल इतर कुले सुर इतर कुले नास्तिकों या असुरों के परिवार में जो भक्तों से भिन्न कोटि हैं क्वा कहाँ तवा आपकी अनुकंपा अनुग्रह अहेतुक कृपा न नहीं ब्रह्मण ब्रह्मा जी का न नहीं तू निस्संदेह भवस्य भगवान शिव का न न तो वही निश्चय ही रमाया लक्ष्मी जी का यत जो मैं मेरा अर्पिता चढ़ाया गया रखा गया शिरसी सिर पर पद्म करहा हस्त कमल प्रसाद प्रसाद के रूप में कृपा के रूप में अनुवाद और तात्पर्य शब्दार्थ भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाय। हे प्रभु हे परम पुरुष कहां घोर नारकीय रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ मैं और कहां आपकी अहेतु की कृपा जो ब्रह्मा जी शिव जी या लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना हस्त कमल नहीं रखते किंतु आपने मेरे सिर पर इसे रखा है। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज भगवान की अहेतुकी कृपा से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यद्यपि वे असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि भगवान ने ब्रह्मा शिव या अपने नित्य संगनी लक्ष्मी जी के सिर पर कभी अपना हस्तकमल नहीं रखा था, तो भी भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के सिर पर कृपा पूर्वक अपना हाथ रखा। यही अहेतुकी कृपा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अहेतुकी कृपा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, चाहे इस जगत में वह किसी भी पद पर क्यों न हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी भक्ति भौतिक स्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर की पूजा करने के लिए उपयुक्त है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14:26 में हुई है। ये जितने लाल कपड़े वाले पीछे सब आगे आ जाओ, सब आगे आओ। तुम्हारे बगल में बैठा है, कान में सुन रहा है, बोलो। कान में सुनने की जरूरत क्या है, साक्षात यहां पर सुनने को मिल रहा है। तो चलो आगे आओ, सब वहां बैठेंगे, बाद में धीरे 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 बाहर निकलना शुरू करेंगे। प्रसाद अभी नहीं है, चिंता मत करो। रतिरमन उसको भी बोलो, रतिरमन उसको भी बोलो, तुम्हारे पीछे बैठा है। तो उजला कपड़ा पहन लिया, इसका मतलब क्या हो गया, पीला से उजला पहनते हैं, पीछे चला गया। आ गया, चलो इधर। भगवत गीता 14:26 में भगवान कहते हैं, माम च यो विचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणां संतीतैतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो कोई भगवान की निरंतर भक्ति करता है, वह आध्यात्मिक जगत में स्थित होता है और उसे भौतिक गुणों सत रज और तम से कुछ भी लेना देना नहीं होता। चूंकि प्रहलाद महाराज आध्यात्मिक पद पर स्थित थे, अतः उन्हें अपने इस शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं था। जो रजो तथा तमो गुणों से उत्पन्न था, रजो तथा तमो गुणों के लक्षण भगवत श्रीमद् भागवतम 1:2:19 में काम तथा लोभ के रूप में वर्णित है। तदार्जस्तमो भावा काम लोभादयश्चे। महान भक्त होने के कारण प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से उत्पन्न अपने शरीर को रजो तथा तमोगुणी माना, लेकिन चूंकि वे पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए थे, अतएव उनके शरीर का संबंध इस भौतिक जगत से न था। शुद्ध वैष्णव का शरीर इसी जीवन में अध्यात्मिकृत होता है। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह लाल हो जाता है और लोहा न रहकर अग्नि बन जाता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न भक्तों के तथा कथित भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक जीवन की अग्नि में निरंतर रहने के कारण आध्यात्मिक बन जाते हैं। उन्हें भौतिक पदार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। श्रील माधवाचार्य की टिप्पणी है कि ब्रह्मांड जननी लक्ष्मी जी को वैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई जैसी प्रहलाद महाराज को प्रदान की गई, क्योंकि यद्यपि लक्ष्मी जी परमेश्वर की नित्य संगनी हैं, किंतु भगवान अपने भक्तों पर अधिक ध्यान देते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्ति इतनी महान है कि जब निम्न कुलों में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं, तो उसे स्वीकार करके लक्ष्मी द्वारा की गई सेवा से बढ़कर मानते हैं। उच्च लोकों में वास करने वाले ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवता विभिन्न चेतना में स्थित रहते हैं, इसलिए कभी कभी असुरों द्वारा पीड़ित होते रहते हैं। किंतु एक भक्त निम्न श्लोकों में भी स्थित रहकर किसी भी परिस्थिति में कृष्ण भावना मृत के जीवन का आनंद लेता है। परतः स्वतः कर्मतः, जिस तरह कर्म करता है, जिस तरह अन्यों से शिक्षा ग्रहण करता है या जिस तरह अपने भौतिक कार्यकलाप करता है, प्रत्येक दशा में जीवन का आनंद भोगता है। इस प्रसंग में माधवाचार्य ने ब्रह्म तर्क में उल्लिखित निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। श्री ब्रह्मवादिविन्द्रात् त्रिदाप्त त्रिपुरुषता तदन्ने च क्रमादेव सदा मुक्तो स्मृतावपि हरि भक्तो च तज्ज्ञाने सुखे च नियमेन तु परतः स्वतः कर्मतो वा न कश्चित् तदन्यथा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्जिनमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भागवत महापुराण इस प्रकार के स्थितियों से भरा पड़ा है। प्रथम में ही दूसरे स्कंद से सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी स्तुति किए हैं, उसके बाद माता कुंती के द्वारा स्तुति किया गया है जिस पर प्रभुपाद जी प्रवचन किए और प्रेयर ऑफ क्वीन कुंती नाम का पुस्तक हुआ। उसके बाद में भीष्म पितामह भगवान को स्तुति किए, सरसैया पर पड़े हुए थे जब भगवान वहां पर आए। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवतम स्तुति और प्रार्थनाओं से ओतप्रोत है। ठीक वैसे ही राघव प्रभु थोड़ा घर से जल्दी आया करो, वैसे ही यह प्रहलाद महाराज की स्तुति भागवत में अंकित की गई है। इस अध्याय में श्लोक संख्या 8 से लेकर के श्लोक संख्या 50 यानी 42 श्लोकों में बहुत सुंदर ढंग से प्रहलाद महाराज स्तुति किए हैं। बड़ा ही सार गर्भित स्तुति है। आज का जो श्लोक है, इस श्लोक के पहले के श्लोक में प्रहलाद जी कहते हैं कि कुछ लोग जानते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, समाज में वे लोग बहुत बड़े लोग हैं, दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन ये सिंपल बात को ये भूल जाते हैं कि यह शरीर क्षणभंगुर है, संसार का जो सुख है वह भी क्षणभंगुर है, यह मात्र मृग मरीचिका के समान है। मृग मरीचिका आप लोग देखे हो? कितने लोग देखे हो जो डेजर्ट में गया है? लेकिन वैसा ही मृग मरीचिका दिखाई पड़ता है गर्मी के दिनों में। आजकल बंबई में उतना दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन नासिक जाओ चाहे उत्तर प्रदेश जाओ, रोड पर गाड़ी चलाओगे तो दिखाई पड़ेगा रोड पर पानी है, दिखाई पड़ता है। ये तो देखे होंगे आप लोग ना, कितने लोग देखे हैं बोलो? बहुत लोग देखे हैं। तो मृग मरीचिका शायद मरुभूमि जाना पड़े लेकिन यही दिखाई पड़ जाएगा। पानी नहीं है, केवल पानी दिखाई पड़ता है, वैसे है मृग मरीचिका। मरुभूमि में पानी नहीं है, लेकिन हरिण समझता है कि वहां पानी है, दौड़ता है, वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, पानी तो वहां होता नहीं है। इस प्रकार से उस प्यास के तृष्णा में वह अपना जीवन गंवा डालता है। ठीक वैसे ही इस भौतिक संसार में कहीं सुख नहीं है, लेकिन परमाराध्य एक तो लेट आया और सबसे पीछे बैठा, तो इस संसार रूपी मरुभूमि में वे लोग भी कठिन परिश्रम करते हैं सुख के लिए। तो प्रहलाद महाराज को आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग कैसे विद्वान हैं, ये लोग कैसे दार्शनिक हैं इत्यादि। तो मानो नरसिंह भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा भी तो गति वही है ना, तुम ही तो इस संसार के हो, तो तुम्हें ऐसा अच्छा बुद्धि कैसे आ गया, तुम्हें ऐसा बुद्धि कैसे आ गया। तम अधिको तम प्रचुरते रज प्रभवे रज नहीं सॉरी तरहि तम कथम निर्विषण अस्ति अनहरे अपि मई प्रवृत्तया। अरे जो तुम इतना अच्छा अच्छा बात कह रहे हो, ये सब तुम्हें कैसे ज्ञान आ गया। तब प्रहलाद जी कहते हैं भगवान यह आपकी कृपा है, आपके कृपा से यह ज्ञान आया। जब तक से साधु और वैष्णव का कृपा नहीं होगा, तब तक से किताबी कीड़ा बनकर के हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विज्ञान के रूप में परिणित नहीं हो पाएगा, रियलाइजेशन नहीं होगा। प्रहलाद महाराज को इसका रियलाइजेशन है, और प्रहलाद महाराज केवल रिपीट नहीं कर रहे हैं ये सब श्लोक, बल्कि दिल से हृदय से ये बातें कह रहे हैं। रियलाइज श्लोक है प्रहलाद महाराज के द्वारा जो कहा गया अब तक से बात है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। तब कहते हैं तो प्रसाद, आपके कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, नहीं तो कहा मैं, जो कि इस श्लोक को पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं कहा मैं, जो कि जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन भगवान आपकी अहेतुकी कृपा है कि आपने अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रखा। ऐसी कृपा सबको प्राप्त नहीं है। उदाहरण दिए हैं यहां पर, किन किन लोगों को प्राप्त नहीं है, तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को, यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी ये कृपा प्राप्त नहीं है कि आपका हस्त कमल उनके सिर पर गया हो। शरीर में चार ऐसे स्थान हैं जो शक्ति के स्रोत हैं, एक सिर, एक हाथ, एक हृदय और एक पैर का तलवा। ये चार ऐसे स्थान है जहां शक्ति प्राप्त की जा सकती है और जहां से शक्ति प्रवाहित होती है। सिर के विषय में सब लोग जानते हैं, शक्ति सिर से आती है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये शक्ति सिर से आ रही है, यानी हेड रीजन से। यदि हेड काम करना बंद कर दे तो हाथ भी है, आंख भी है, पैर भी है, ना जी दिखाई पड़ेगा कुछ भी। अरे हुंकारी तो भड़ा करो कम से कम, सब कुछ रहते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो शक्ति हेड से आती है और शक्ति हेड में ही जाती है। कहते ना तुम्हारे माथा में भूसा भरा हुआ है, यानी शक्ति नहीं है कुछ सोचने समझने का, ज्ञान प्राप्त करने का। उसके बाद हृदय से बाप मां जब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो हृदय से आशीर्वाद देते हैं। जय श्री श्री गौनिताय राधारास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाए। या जो सुहृद मृत होते हैं वो हृदय से आशीर्वाद देते हैं, और हृदय से यदि कुछ कहा जाए तो तुरंत फलीभूत होता है, क्योंकि भगवान हृदय के बहुत नजदीक निवास करते हैं, भगवान तुरंत सुन लेते हैं। इसीलिए वैष्णव लोग आलिंगन करते हैं, दिल से दिल मिलाते हैं। और तीसरा शक्ति का स्रोत है, हाँ आशीर्वाद ऐसे दिया जाता है ना, सीता जी अभी भी आशीर्वाद ऐसे दे रही है, देखिए वहां पर हाथ से आशीर्वाद दिया था, बड़े लोग हाथ से आशीर्वाद देते हैं। और चौथा आशीर्वाद का स्रोत है पैर। इसीलिए पहले जमाने में बुजुर्गों का बच्चे लोग या छोटे लोग चरण स्पर्श करते थे, पैर छूते थे, या पैर छूना बड़ा ही पावरफुल है शक्ति प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का। यदि हम किसी का चरण स्पर्श करेंगे, पैर छुएंगे, तो स्वाभाविक है उसका हाथ उठ जाएगा, आशीर्वाद मारने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और नहीं तो दिल से आशीर्वाद देगा इत्यादि। मुझे एक वक्तव्य याद आ रहा है कि एक बार दो लड़के थे जो अमेरिका पढ़ने गए थे, जो पढ़ लिख करके बड़ा होनहार हुआ उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई, ये पंखा बंद कर दो, उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई, और जो फेल हो गया वो इंडिया में आया। कुछ समय के बाद वह अमेरिका से आ रहा था तो एयरपोर्ट पर उसके मां बाप दादा दादी सब लोग आए, और साथ में उसका वो दोस्त भी आया जो फेल होकर के आया था। हनुमान जी ध्यान सुनना, तो जब ही वह बाहर निकला जहां पर बाप मां सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आकर के सीधे अपने दादा दादी का बाप मां का चरण स्पर्श करने लगा। जब चरण स्पर्श किया ये लोग गदगद होकर के आशीर्वाद दिए, और यह मूर्ख मित्र जो फेल होकर के आया था वो देख रहा था। जब सब हो गया तो पूछता, अरे तू इतना दिन अमेरिका में था, अभी तक वहां का कल्चर नहीं सीखा, अभी तक वही पुराना जमाना के ही तू चला रहा है, अरे अभी तो हाय हलो का जमाना हो गया है, तू वही अभी ए बेटा गया था वो हाय हलो सीख करके फेल होकर के आ गया था, और ए अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा था। तो सब सुनने के बाद कहता है कि भाई आजकल जो कुछ मेरे पास है वह सब इन लोगों के आशीर्वाद से है, इन लोगों के आशीर्वाद से ही जो कुछ मैं हूं वो हूं। ये है संस्कार, ये है संस्कार। आजकल दुख की बात है कि हाय हलो का जमाना आ गया है, मरने के बाद लोग हाय हाय करते हैं, जीते ही लोग हाय हाय करना शुरू करते हैं। मां को माता नहीं बोलते हैं, मम बोलते हैं, मम मतलब चुप, और पिता को पिता नहीं बोलते हैं, डेड बोलते हैं, डेड भी नहीं, डेड मर गया, मरा हुआ आदमी है। आजकल की यह सभ्यता संस्कृति हो गई है। तो मैं कह रहा था कि हस्त वरदः, हस्त जो है वरदान देने के लिए है। तो प्रहलाद महाराज उसी के लिए कह रहे हैं, कहते कहते हैं क्वा हम। ये शब्द जो है बड़ा ही सुंदर शब्द है क्वा हम, कहां मैं। अब श्लोक पर आइए, अब तक से श्लोक का मीनिंग समझाया, अब श्लोक समझा रहा हूं। कहते हैं क्वा हम, क्वा मतलब कहां और अहम मतलब मैं, कहां मैं और आगे आया क्वा मतलब कहां आप। अपने और भगवान, अपने स्थिति और भगवान के स्थिति का यहां पर तुलना कर रहे हैं। ऐसा ही एक श्लोक आया है भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में, जब सुदामा जी भगवान के पास गए थे अपने पत्नी के अनुरोध विनती करने पर, इंसिस्टेंस पर, कहेंगे क्या होगा, आग्रह करने पर, दुराग्रह करने पर जब गए थे, उनका खूब खातिर बातिर हुआ। क्या नहीं हुआ, भगवान सुदामा जी को अपने हाथ से मानो टांग करके ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाए, सुदामा जी का पाद प्रक्षालन किए, साक्षात लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी चमर डुला रही थी, भगवान बैठ करके उन्हें खिला रहे थे। इस प्रकार से सुदामा जी का खूब सेवा हुआ। जब सुदामा जी वहां से निकले तो उन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा कि पत्नी जाने पर क्या कहेगी, वो तो भेजी थी कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो दी थी वो भी भगवान खा गए और बदले में कुछ भी नहीं दिए। तो सुदामा जी उल्टा नहीं सोचे, सुदामा जी सोचे कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने क्या क्या किया। उसी बात को सुदामा जी याद कर रहे थे रास्ते में आते आते, तो वहां भी कुछ ऐसा ही श्लोक है, कहते हैं क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधु इति यस्माहम बाहू भ्याम परिरंभिता। कहते क्वा अहम दरिद्र पापियान, कहा मैं दरिद्र हूं, कंगाल हूं, और कंगाल बनने का कारण क्या है, पापियान, क्योंकि मैं पापी हूं। याद कर रहे हैं कि जब गुरु माता ने ये चना दिया था, मैं बड़ा था, कहा कि संभाल कर लेकर जाओ और तुम और कृष्ण दोनों खा लेना, लेकिन मैं अकेले चपट लिया था। तो भगवान को बिना अर्पित किए हुए तीर्थपाद दास जो व्यक्ति खाता है, भगवान कहते हैं ते पचंती अघम पापम, वो व्यक्ति पाप खाता है, और जैसा आप खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा, वैसा आपका तन बनेगा। तो सुदामा जी ने कहा मैंने तो पाप खाया इसलिए मेरा शरीर पापमय हो गया। उसको बोलो प्रभुपाद के आसन से इधर बढ़ जाए तो नींद नहीं आएगी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम्हारा आसन बड़ा अच्छा हो गया इसलिए नींद आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो पापियां, सुदामा जी याद कर रहे थे कि मैं अकेला खा गया था, वह बहुत बड़ा पाप किया था, इसके चलते हमें यह दुख भोगना पड़ रहा है, मैं दरिद्र हूं। जो बिना भगवान को अर्पित किए खाता है वो पाप खाता है, और वह कभी सुखी नहीं हो सकता है, दरिद्र कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्वाहम दरिद्र पापिया, मैं कंगाल हूं, फटा पुराना कपड़ा पहना हूं, और क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना, इतना बड़ा पापी हूं, दरिद्र हूं। और कहां भगवान श्री कृष्ण जो श्रीनिकेतन है, द्वारिकाधीश हैं, ब्रह्म बंधु इसी अस्माहम। भगवान यह नहीं देखे कि मैं ब्रह्म बंधु हूं, ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण का काम नहीं किया हूं, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, बाहू भ्याम परिरंभिता, अपने बाहों में मुझे गलबाही दिए, आलिंगन किए। इस आलिंगन का, अपने भगवान के बाहों के आलिंगन का यहां पर गुणगान कर रहे हैं सुदामा जी। ठीक वैसे ही यह श्लोक अन्यत्र भी वर्णित किया गया है। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का परिभ्रमण कर रहे थे तो कुर्म क्षेत्र आए, वहां पर वे कुर्म ब्राह्मण के घर पर कुछ दिन रुके। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा कुर्म ब्राह्मण किया और उसमें भी वैराग उत्पन्न हुआ और उसने महाप्रभु से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आपका आदेश है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारा ए देश। और यह कह करके वे पुनः जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किए। साउथ इंडिया का अंतिम टूर था, आगे आ रहे थे। तो वहीं पर एक वासुदेव विप्र नाम के एक बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान के भक्ति में बड़े निपुण थे, देह गेह का थोड़ा भी शुद्ध नहीं था उनमें, वे अहंकार स्थूल सूक्ष्म आदि समस्त देहों से ममता और अहमता खत्म कर चुके थे, अहर्निश भगवान में लगे रहते थे, लेकिन कर्मों के अनुसार उनके शरीर में कोढ़ हो गया था, बड़े कीड़े पड़ गए थे, कभी कभी वे कीड़े नीचे गिर जाते थे तो वासुदेव ब्राह्मण उन कीड़ों को उठा करके और पुनः उसी स्थान पर रख देते थे जहां से वे गिरे थे। यह परिस्थिति थी वासुदेव ब्राह्मण की, वासुदेव विप्र की। जब उन्होंने सुना कि भगवान आए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए कुरु ब्राह्मण के निवास की तरफ प्रस्थान किए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने सुना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान कर दिए, चले गए, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो देखा भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पर खड़े हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु उस वासुदेव ब्राह्मण को आलिंगन दिए। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उसे आलिंगन दिए तो आलिंगन से तुरंत उसका पूरा शरीर सौंदर्यमय हो गया और भगवान के स्पर्श से पूरा शरीर सौंदर्यमय हो गया और उसका जो रोग था वो सब दूर हो गया। तो इस प्रकार से भगवत पार्षद शरीर देख करके वासुदेव विप्र बहु स्तुति करे कहे सुन दयामय, जीवे यही गुण नाही तोमाते यही होय, मोर देखी मोर गंध पालाय पामर, केन मोरे स्पर्श तुमी स्वतंत्र ईश्वर। तो वासुदेव विप्र विभिन्न प्रकार के श्लोकों से भगवान का स्तुति करने लगे। उसी में से एक श्लोक यह था सुदामा जी के द्वारा कहा गया, क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहु भ्याम परिरंभितम। और अपने लिए कह रहे हैं बहु स्तुति करी कहे, बहुत स्तुति करने के बाद कहते हैं सुनो दयामय, हे दयामय मेरा बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। जीवे यही गुण नाही तुमाते यही है, जीव में कोई गुण नहीं है जो कि आपका कोई भजन कर सके, ये केवल आपके कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अरे मेरा ही देखिए परिस्थिति, आज ये सुंदर शरीर प्राप्त हो गया आपकी कृपा से, नहीं तो इसी शरीर को देखकर मोर देखी मोर गंध पालाए पामर, पापी से पापी व्यक्ति भी मुझको देख करके और मेरे शरीर से जो गंध आ रहा था उस दुर्गंध से भाग जाते थे। लेकिन आप स्वतंत्र ईश्वर है और आप मेरा स्पर्श किए और मुझ में परिवर्तन हुआ। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज भी यहां पर भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान के अहेतुक तीन पार्ट में तात्पर्य है। पहला तात्पर्य है पहला में कि भगवान के अहेतुकी कृपा का वर्णन किए हैं प्रभुपाद जी। दूसरे में दूसरे पैराग्राफ में ये बताए हैं कि जो भगवान के भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं उनका शरीर कोई सामान्य शरीर नहीं रह जाता है, वह दिव्य शरीर हो जाता है। और तीसरे में बताए हैं कि यह जो अहेतुकी कृपा प्रहलाद को हुई थी वह कृपा ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो इन तीनों पर हम लोग टच करेंगे। तो भगवान की अहेतुकी कृपा, भगवान का अनुग्रह, भगवान अनुग्रह करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, कृपा करने के लिए यहां इस धराधाम पर आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, वे स्वयं आते हैं। भागवतम में वर्णन किया गया है अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देह आस्थितम भजते तादृशी क्रीणा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानाम, वहां पर अनुग्रहाय भूतानाम, एनीवे प्राणियों पर कृपा करने के लिए भगवान आते हैं। जो मृतलोकवासी हैं या जो इस संसार में प्राणी हैं वो भी प्राणी हैं और जो भक्त हैं वो भी प्राणी हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों का शरीर पंच भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है हनुमान जी, है ना? तो फिर भक्तों में और सामान्य लोगों में क्या अंतर है बताइए आप लोग, क्या अंतर है भक्तों में और सामान्य लोगों में? हाँ नहीं, वो ठीक उत्तर दिया। सामान्य लोग देह को ही सर्वस्व मानते हैं और देह के सेवा में सब कुछ लगाते हैं, और भक्त लोग भगवान को सर्वस्व मानते हैं और अपने देह को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब भक्त लोग इस भौतिक संसार में हैं और भक्त लोग आध्यात्मिक जगत में हैं। तो पहले ये जो भक्त लोग इस भौतिक संसार में हैं उनके विषय में हम लोग बात करेंगे, और जो भक्त लोग वैकुंठ जगत में हैं आध्यात्मिक संसार में हैं उनके विषय में बात करेंगे, और इन दोनों में क्या अंतर है वो बात करेंगे। तो भौतिक जगत में जो भक्त लोग हैं, एक तो क्लियर हो गया सामान्य लोगों में और भक्तों में क्या अंतर है। भौतिक जगत में जो भक्त लोग हैं वे भक्ति कर पाते हैं, भगवान को सर्वस्व मानते हैं और इसलिए सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। इस संसार में भगवान और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा दीवाल है, वह है अहमता, ममता, स्थूल देह और सूक्ष्म देह और इससे संबंधित पुत्र कलत्रादि एवं विषय भोग, जिसके चलते संसारिक लोग भगवान को भूल जाते हैं। बहुत बड़ा बाधक है, जिस बात को प्रहलाद जी आगे का श्लोक में पीछे का श्लोक में बताए हैं। जब तक से भक्तों पर भगवान और वैष्णव की कृपा नहीं होगी तब तक से इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान का अनुग्रह होगा और कैसा अनुग्रह, तव अनुकंपा, आपकी अनुकंपा, आपका अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह सब पर है, संसारियों पर ही भगवान का अनुग्रह है और भक्तों पर ही भगवान का अनुग्रह है। संसारियों को जब संसारिक वस्तु मिल जाती है, मंदिर में आए और किसी चीज की कामना हुई, भगवान से प्रार्थना की, वो मिल गया, भगवान का हम पर बड़ा अनुग्रह है, भगवान पर हमारा बड़ा कृपा है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वे भौतिक वस्तुओं को अनुग्रह नहीं मानते हैं, बल्कि भौतिक वस्तुओं के विस्मृति को अनुग्रह मानते हैं और स्मृति को अनुग्रह नहीं मानते हैं। भौतिक वस्तुओं का देह से संबंधित जो स्मृति है उसको अनुग्रह नहीं मानते हैं, विस्मृति को अनुग्रह मानते हैं। यही तो भक्ति है। सत्यम अस्मर्तव्यम विष्णु, विस्मर्तव्यम न क्वचित। नित्य निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करें और कभी भी उन्हें भूले नहीं, यही भक्त का पहचान है। और जो संसारिक लोग हैं वो लोग भी निरंतर स्मरण करते हैं, लेकिन क्या स्मरण करते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो भक्तों पर अनुग्रह है भगवान का कि वे लोग भगवान को कभी भूलते नहीं है, और भगवान को नहीं भूलने के चलते वे किसी भी परिस्थिति में रहें वो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन स्मरण करते रहते हैं। जैसे कहा जाता है जो ढेंकी होती है, ढेंकी देखा ना, ढेंकी यदि स्वर्ग में भी चला जाए तो चावल ही को धान कूटेगा। तो वैसे ही भक्त लोग कहीं भी रहे, नारायण परा सर्वे न कुतस्तस् न विद्यते स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, कहीं भी रहे उनमें कोई भेद नहीं है। तो ये भगवान का अहैतुकी कृपा है जिसके चलते भक्त लोग सब परिस्थितियों में उनका चिंतन करते रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण भक्ति सुधा पानाद। बृहद भागवतामृत में यह श्लोक आया हुआ है, जब नारद जी सबसे श्रेष्ठ भक्त का चिंतन कर रहे थे, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त से मिलना चाहते थे, तो वे एक राजा से मिले, उसके बाद इंद्र से मिले, ब्रह्मा जी से मिले, भगवान शिव से मिले और जिन जिन लोगों से मिले उनका खूब गुणगान किए दिल खोल करके। जब भगवान शिव का गुणगान कर लिए तो भगवान शिव नारद जी से कहा कि आपको भाई चाहिए क्या, आप इतना चमचागिरी क्यों कर रहे हो, इतना गुणगान क्यों कर रहे हो? तो कहा कि आप सबसे महान भक्त हैं। तो नारद जी ने कहा, सॉरी, भगवान शिव ने कहा कि आपको किसने बता दिया कि मैं महान भक्त हूं, एड्रेस गलत है। अरे मैं महान भक्त नहीं हूं,
सब द्वारका वासी लोग महान भक्त हैं जो वैकुंठ से आए हुए हैं। उनका वर्णन करते करते भगवान शिव सोचे तो द्वारका वासी लोग तो भगवान संबंधित हैं, वैकुंठ से आए हुए हैं, कतई संसार में भी ऐसे भक्त हैं जो उनसे भी महान हैं। तो नाराज जी को थोड़ा आश्चर्य, अरे कौन है वह? और महानता का गुणानुवाद करते हुए कहते हैं, कृष्ण भक्ति सुधा पाना देह दही कब स्मृते, जो कृष्ण भक्ति रसामृत का सुधा पान करता है, जिस अमृत का वह पान करता है, हरि कथा हरि कीर्तन भगवत प्रसाद यह साधु संग धाम वास यह सब कृष्ण भक्ति सुधा पानात, ये कृष्ण भक्ति रूपी अमृत का जो पान करता है, देह दैहिक विस्मृते, वह देह और देह से संबंधित वस्तुओं से अलग हो जाते हैं, उन्हें उसकी विस्मृति हो जाती है। मैं कहा ना कि भक्तों और संसारियों में अंतर है कि भक्त लोग देह और दैहिक देह और देह से संबंधित वस्तुओं का स्मरण करते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं वे भगवान का स्मरण करते हैं, यानी इसको वे भूल जाते हैं। तो विस्मृते, उनकी स्मृति ही नहीं रहती है। हरिदास ठाकुर 22 बाजार में मारे गए, कोई स्मृति नहीं थी देह की। विष्णु पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, यहां एक कांटा चुभ जाए तो नानी याद आती है, और सरसैया पर पड़े हुए थे लेकिन शरीर का विस्मृति था। यहां पर हम लोग बैठे रहते हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास 56 भोग यहां पर है, सब कुछ है, खाने पीने का सब व्यवस्था है, फिर भी स्मृति बनी रहती है, वो बाकी रह गया है, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, स्मृति बनी रहती है। तो देह का और देह से संबंधित वस्तुओं का जिसमें विस्मृति हो जाए वही भक्त है। भक्ति का पहचान इसी उसी को है, जैसे हम बताया वासुदेव विप्रका, उन्हें विस्मृति हो गई थी शरीर की, कोढ़ हुआ था, कीड़े नीचे गिर रहे थे, उड़ाकर डालते थे, क्या दर्द नहीं होता था। वैसे प्रभुपाद जी के देह में, प्रभुपाद लामृत में आल पढ़ना कि वैद्यराज जब आए देखे प्रभुपाद जी को, तो करी इनके शरीर में तो इतना दर्द होना चाहिए, पता नहीं अब तक कैसे जीवन धारण किए हुए हैं, इतना दर्द होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति का सुधा पान कर रहे थे, भागवत श्रवण भागवत का अनुवाद कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, इसलिए देह दैहिक विस्मृते। इस प्रकार से उनका देह सामान्य देह नहीं हो जाता है, उनका देह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तेसाम भौतिकम देहे अपि, उन भक्तों का हालांकि देह भौतिक होता है, पृथ्वी हवा आकाश अग्नि जल से बना हुआ होता है, यह सामान्य लोगों का होता है, देहे अपि तेसाम भौतिक देहे अपि, ये देह भौतिक होने के बावजूद भी सच्चिदानंद रूपता, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप होता है, जैसे भगवान का स्वरूप है। प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं लोहा का, लोहा लोहा रहता है लेकिन जब आग से उसका स्पर्श करा दिया जाता है, आग में रख दिया जाता है, तो वह लोहा लोहा नहीं रहता है, क्या बन जाता है? आग बन जाता है। ठीक वैसे ही भक्त लोग कृष्ण भक्ति सुधा पान कर करके देह और दैहिक वस्तुओं को भूल करके कृष्ण के चिंतन में इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि दे बिकम वैकुंठ मैन, सच्चिदानंद रूपता, उनका सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तो जो वैकुंठ में है भक्त लोग, और जो इस भौतिक संसार में मृत्युलोक में जो भक्त लोग हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वैकुंठ लोक में भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं नित्य निरंतर, और इस भौतिक जगत में भी वे लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो उन्हें कोई अंतर नहीं है। तो यह तरीका है अहमता और ममता को दूर करने का, और वह तरीका है कृष्ण भक्ति रूप सुधा पान करना। प्रभुपाद जी हम लोगों को यह दिए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हम लोगों को, कीर्तनीय सुधा हरि। प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, ये है वैकुंठमयन होने का तरीका, सच्चिदानंद स्वरूप होने का तरीका है। तब इतना कहने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी मैं आपको एक बात, सॉरी भगवान शिव कह रहे हैं नारद जी से कि नारद जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बड़ा गुढ़ बात है, आप बैठिए, मैं आपके कान में एक बात कह रहा हूं और आप श्रद्धापूर्वक उस बात का श्रवण कीजिए। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, त्वत्ता ततो मद गरुणादिशस्य श्रियो पिकारुण्य विशेष पात्रम प्रहलाद एव पथितो जगत्याम कृष्णस्य भक्तो नितराम प्रियस्य। कहते हे तात, तुम्हारे पिताजी, त्वत्तात तुम्हारे पिताजी मद, मैं भगवान शिव कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी मैं गरुण आदि जितने भी हैं, च मतलब गरुण आदि च और जितने भक्त हुए हैं, यहां तक कि श्रियोपि, च का मतलब देवलोक के देवतागण भी, और श्रियोपि भी लक्ष्मी जी भी, ये लोग भी भगवान के उतने कृपा पात्र नहीं हैं। कारुण्य विशेष पात्रम, ये लोग भी उतने कृपा पात्र हैं जितना कि प्रहलाद एव मतलब निश्चय ही प्रहलाद प्रथितो जगत्याम, पूरे जगत में प्रहलाद जितना भगवान के कृपा के पात्र हैं उतना न तो तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी हैं, न मैं हूं, न गरुण हैं, न देवतागण हैं, और न स्वयं लक्ष्मी जी हैं। कृष्णस्य भक्तो नितराम प्रियस्य, अत्यंत प्रिय हैं प्रहलाद जी। आप ढूंढ रहे हो ना कि भगवान का कौन प्रिय है, तो सबसे बड़ा प्रिय जो है संसार में वह है प्रहलाद जी। भगवान शिव ने बात कहा और वही बात यहां पर प्रहलाद जी भी कह रहे हैं, भगवान शिव के बात को दोहरा रहे हैं। कहते हैं क्वाहम रज, अब अपना वक्तव्य समाप्त कर, अमन प्रारंभ कर रहे हैं अपने विषय में। देखिए हम लोगों के पास आज जो कुछ भी है भूलना नहीं चाहिए, ये प्राप्त हुआ है स्कान के चलते, ये प्राप्त हुआ है प्रभुपाद जी के चलते, है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो, नहीं तो कौन हमको पूछेगा बाहर, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आज लोग पूछते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम इस्कान के भक्त हैं। कभी कभी भक्तों में अहंकार आता है, इस्कान ने हमको क्या किया, हमने इतना किया, इस्कान ने हमारा क्या किया, भूल जाते हैं तुरंत। हम लोगों को अपने परिस्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां रोड छाप कुत्ते थे, आज प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग कहां आ गए हैं, मनुष्य बन चुके हैं। मनुष्य तो बने, पहले तो पशु थे, अब तो मनुष्य बन गए हैं। तो अपने परिस्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिस्थिति को भूल जाता है वह व्यक्ति डूम्ड हो जाता है, पतित हो जाता है। इस संबंध में एक कथानक मैं कहा करता हूं कि एक बार एक सेठ जी थे, बैंक में जा रहे थे लॉकर में सामान बंद करने के लिए, तो सूटकेस में रुपया पैसा गहना ज्वेलरी वगैरह सब लेकर के बैंक में जा रहे थे लॉकर में बंद करने के लिए। रास्ते में मंदिर था तो चलो भगवान को ही प्रणाम करके आए, ये तो रखने जा रहा हूं और मिले है? तो भगवान को प्रणाम करने आ रहे थे, देखो कितना अच्छा सो रहा है, हरि बोल, अच्छा सो रहे हो, लक्ष्मी जी पर सो रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर, ये हुंडी पर ही सो रहा है, लक्ष्मी जी बड़ा निंदा रहे हैं। तो मंदिर रास्ते में था, लेकिन मंदिर में बहुत सीढ़ियां थी, ऊंचा मंदिर था, दिल्ली का मंदिर जैसा था चाहे बेंगलोर के मंदिर जैसा सीढ़ी था, तो सीढ़ी पर चढ़कर जा रहा था, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया और उसका सूटकेस गिर गया हाथ से, जब हाथ से गिर पड़ा सूटकेस खुल गया तो उसमें रुपए पैसे हीरे जवाहरात सब थे। वॉचमैन देख रहा था, वॉचमैन भागते भागते गया और जाकर के पहले क्या किया, वो सूटकेस को तुरंत बंद कर दिया, सूटकेस बंद किया ले जाकर के अपने खोली में रख दिया सूटकेस को, और आया और सेठ जी को हॉस्पिटल लेकर गया, हार्ट अटैक हुआ था, हॉस्पिटल लेकर गया। जब सेठ जी बिल्कुल ठीक हो गए, चंगा हो गए, तो वॉचमैन को बहुत बहुत धन्यवाद करने लगे कि भैया तूने हमारा जान बचा दिया। तो वॉचमैन गया और वो सूटकेस लेकर के आया और सेठ जी कहा कि आपका है, या जा रहे थे तो गिर गया था और इसमें बहुत रुपए पैसे हीरे जवाहरात पड़े हुए थे तो मैंने बंद करके रख दिया था, आप गिन लीजिए सब तो है ना, यदि हम लोग होते तो क्या करते है? अपना वॉचमैन क्या करता है, अरे हम ही लोग क्या करते, चलो भगवान पास ले चलते हैं। एनीवे तो सेठ जी बड़े इंप्रेस हो गए उससे, कहे वाह बड़ा अच्छा आदमी है। तो सेठ जी कहे कि भैया देखो आप तो हमारा एड्रेस है, तुम्हारे घर पर आ जाना, तो गया, कहा आज से तुम वॉचमैन वहां नहीं रहोगे, आज से तुम हमारा मुनीम रहोगे, अब ये पैसा वैसा बैंक में नहीं जाएगा, तुम ही इसका देखभाल करो, तुम हमारा ट्रेजरर बन जाओ, कैशियर बन जाओ। कुछ समय के बाद सेठ जी को चीफ मिनिस्टर से मिलने जाना था, तो सेठ जी कहे थे मुनीम जी से, मुनीम जी कल इस समय हम लोग चलेंगे। हाँ महाराज चलेंगे, सेठ जी हाँ बोल दिया। अब समय हो गया, गाड़ी रेडी है, जाने का समय हो गया, मुनीम अभी आ ही नहीं रहे, मुनीम जी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, सेठ जी बड़े परेशान हो गए। तो सेठ जी गए देखने के लिए कि मुनीम जी क्या कर रहे हैं, तो मुनीम जी को उन्होंने मुनीम बनाया था वॉचमैन को, तो अच्छा बंगलो दिया था, खाने पीने के नौकर चाकर सब कुछ थे, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए सब कुछ था। तो सेठ जी क्या देख रहे हैं कि मुनीम जी ये वॉचमैन का जो खाकी ड्रेस, पहले खाकी पहनते थे वॉचमैन लोग, वो खाकी जो ड्रेस है वो पहन करके कर, इधर नहीं इधर चलने का, इधर नहीं इधर जाने का, इधर नहीं इधर जाने का, और एक मिरर के सामने खड़ा होकर के ऐसे बोल रहे थे। तो सेठ जी देख रहे थे कहे हमारे मुनीम जी कहीं पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हैं मुनीम जी। तो सेठ जी ने कहा मुनीम जी तो दिखा दे, सेठ जी बुला रहे हैं, अरे ये आप क्या कर रहे हैं, आप भूल गए आप मुनीम जी हैं, हम लोगों को चलना है, या फिर वही के पहन लिए, वही खाकी वस्त्र के पहन लिए वॉचमैन, वॉचमैन आप नहीं हमारे मुनीम जी हैं। तो कहा कि सेठ जी ये धन दौलत बंगला, ये रुपया पैसा कपड़ा, ये सब आपका है, आपने हमको दिया है, लेकिन जो खाकी ड्रेस है ना वो मेरा है, इसलिए मैं डेली पहन कर देखता हूं कि मैं तो वही हूं ना, कहीं बदल तो नहीं गया हूं ना। हम लोगों को डेली इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मैं कहीं मैं बदल तो नहीं गया हूं ना, ये पावर पोजीशन मिल जाती है, हैं? ये नहीं भूलना चाहिए। मैं देखता हूं पहले पीला कपड़ा पहनते हैं तो एक पोजीशन होती है, पीला से उजला पहन लेते हैं तो पीछे बैठना शुरू करते हैं, कहां लड़का है अभी, पीछे बैठा था, ये ठीक नहीं है, मुल्ला नहीं चाहिए। लाल कपड़ा पहन ले तो कहना ही क्या, उसका तो भाव बढ़ गया, उसका शेयर मार्केट ऊपर चला गया है। संन्यास ले तो कहना ही क्या है। तो ये सब पावर पोजीशन जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है प्रभुपाद के चलते, इस्कान के चलते, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रहलाद जी हमारे आचार्य हैं, महाजन हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, कहते हैं क्वाहम रज प्रभव, अरे कहा मैं जिसमें मैं रजोगुण में जन्म लिया। जो आश्रित प्रवृत्ति वाले होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, काम ये स क्रोध ये स रजोगुण समुद्भव। जो रज और तमा का स्थान है वहां पर काम क्रोध मुधा मुहादि प्रचुर मात्रा में होता है। तो हिरण्यकश्यपु में इस भर भर का कूट कूट का भरा हुआ था, काम क्रोध मोह इत्यादि। तो वही कह रहे हैं प्रहलाद जी, क्वा अहम रज प्रभव, मैं कहा रजो गुण प्रभव, मतलब पुनरपि जन्म, पुनरपि मतलब जन्म, कहा मेरा जन्म जो रजोगुण परिवार में हुआ था। ईस हे प्रभु, तमो अधिके अस्मिन, और तमो गुण का तो बहुत प्रचुरता था, तमा प्रचुरे प्रभवे रजतम उत्पत्ति स्थाने, तो बहुत मात्रा में तमोगुण और रजोगुण का उत्पन्न हुआ, जात में उत्पन्न हुआ। और उतना ही नहीं, सुरेतर सुरेतर कुले सुर इतर, सुर मतलब देवता, इतर मतलब नीचे, या सुर के विपरीत, सुर के विपरीत क्या हुआ, असुर। मैं असुर कुल में जन्म लिया, जात सुरेत इतरे, मैं असुर कुल में जन्म लिया जहां पर रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। हे ईश्वर, क्व तवान तव अनुकंपा, आप पूछ रहे हैं ना कि मुझ में ऐसी भावना कैसे आ गई, मैं क्यों आसक्त नहीं हुआ, इस मृग मरीचिका में मैं क्यों नहीं कहा पड़ा, तो अनुकंपा, ये आपका कृपा है, आपके कृपा के चलते ही मैं नहीं फंस पाया, नहीं तो रजोगुण में उत्पन्न हुआ, तमोगुण के प्रधानता के परिवार में रहते हुए एक तो जन्म होना और एक वास संग। प्रहलाद जी का जन्म हुआ कहते हैं रजोगुण में, और तमोगुणी लोगों के साथ में वास था उनका, असुरों के बीच में उनका निवास था, यहां तक कि ब्राह्मण के बेटे संड और अमरक भी वही थे, उन लोगों के बीच में इनका निवास स्थान था। कहते हैं ये आपका ही कृपा है, आपने अपना कृपा कर करके मेरे सिर पर यन्मे अर्पित शिरसि पद्म करो प्रसाद, ये आपकी अहेतुक कृपा है कि आप कृपा करके अपना हाथ हस्तव्रत आपने हमारे सिर पर रखा। प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी एक फोटो बनवाए हैं, देखा आप लोगों ने, जहां पर भगवान नरसिंह देव प्रहलाद जी के सिर पर अपना हाथ रखे हैं, देखा यही पड़ा रहा? देख लेना इसमें है, यह श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। तो आपके सिर पर, आप मेरे सिर पर यन्मे अर्पित शिरसि पद्म कर, भगवान का जो कुछ भी अंग है उनका उपमा दिया गया है कमल से, हस्त कमल, आप अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रख करके कृपा किए, जिस कृपा के चलते मैं इसमें नहीं फंस पाया, और अपने सौभाग्य का वर्णन प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वह कृपा प्राप्त हुआ जो कि ब्रह्मा जी को ही प्राप्त नहीं हुआ, भगवान शिव को ही प्राप्त नहीं हुआ, गरुण जी यानी यहां पर तो बताया गया है रमवा रमोया, वही मतलब निश्चय ही कहते हैं न ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी को नहीं मिला। ब्रह्मा जी एक सामान्य जीव हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी को नहीं मिला। वो मुंह में पढ़ सकते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी मुंह में पढ़े भी थे, ब्रह्म विमोहन लीला पढ़े हैं, मुंह में पढ़ गए थे। कहते न तू, तू मतलब परंतु लेकिन, तो कोई कहता था शिव जी वो तो जीव नहीं है, शिव जी भगवान भी नहीं है और शिव जी जीव भी नहीं है। उनका उपमा दही से दिया गया है, कैसे ब्रह्म संहिता में श्लोक, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तथा पृथगस्त हेतु यह सम्मुता था समुपैति कार्यात गोविंद मादि पुरुषम तम हम बजाम। जिस प्रकार से दही है वो दही दूध भी नहीं है और दूध से अलग भी नहीं है, वैसे ही भगवान शिव न तो भगवान है और न भगवान से अलग है, उनका पोजीशन ही एक अलग है। इसलिए यहां पर तू शब्द आया हुआ है, लेकिन लेकिन वे भी भवस्य, लेकिन वे भी इस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं न और नहीं, वही मतलब सर्टेनली निश्चय ही रमया लक्ष्मी जी भी। ये तीनों में अंतर क्या है, केवल इन लोगों को एक कृपा प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी में अहंकार है, अहंकार के चलते यह कृपा प्राप्त नहीं हुआ जो कि इन्हें प्राप्त हुआ। हालांकि सृष्टि से पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान कृपा करना मुझे अहंकार ना होने पावे, लेकिन भगवत विस्मृति हो गई कि भगवान को भी टेस्ट करने पहुंच गए। भगवान शिव प्रतिरमन रेवती रमन क्या कर रहा है, तुम मैसेज भेज रहा है, बाद में पूछूंगा। भगवान शिव जब भगवान मोहिनी मूर्ति धारण किए थे तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा, उस समय वो नहीं पहुंच पाए थे भगवान शिव, समुद्र मंथन के समय भगवान शिव वहां पर नहीं थे, सब लोग थे लेकिन वो नहीं थे। जब मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किए भगवान तो उनकी बड़ी अब गुणगान होने लगा मोहिनी मूर्ति का, अरे क्या सुंदर रूप था। अब गुणगान सुन करके भगवान शिव का मन थोड़ा भटकने लगा, कहे कि भगवान का वह मैं रूप देखना चाहता हूं, और भगवान का वह रूप देखने के लिए भगवान के पास गए तो भगवान ने कहे कि भगवान शिव अनर्थ हो जाएगा, ये आप क्या चाहते हो, ये रूप मत देखो। कहा नहीं प्रभु मुझे देखना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। अब माने नहीं तो भगवान शिव बड़े भोले भाले हैं, तो छोटे बच्चे भोले भाले होते हैं, माँ बाप उसका इच्छा पूरा कर देते हैं, भगवान शिव भोले भाले हैं तो उनका इच्छा भगवान पूरा कर दिए। और ज्यों ही मोहिनी का रूप धारण किए भगवान, भगवान शिव देख करके कामातुर होकर के और मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये कथा जानते हैं ना आप लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरिदास ठाकुर महान भक्त थे, हरिदास ठाकुर का तुलना उस बताया भगवान शिव से कहीं ऊंचा किया गया है, प्रहलाद की तुलना शिव से ऊंची की गई है, स्वयं भगवान शिव सॉरी प्रहलाद की तुलना भगवान शिव से, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि प्रहलाद मुझसे भी ऊंचे हैं। प्रहलाद जी बचपन से लेकर के कभी भी भगवान के विषय में भटके नहीं, कितना भी दंड दिया गया कितना भी प्रलोभन दिया गया लेकिन वे भटके नहीं, निरंतर स्मरण में लगे रहे। इसलिए जब भी स्मरण करने वालों का गुणगान किया जाता है तो प्रहलाद महाराज का नाम आता है, प्रहलाद स्मरणे, भगवान के स्मरण में। तो यही तो भक्ति है, सप्तम स्मर्तव्यम विष्णु, नित्य निरंतर प्रहलाद जी। और रामाया लक्ष्मी जी को बहुत अहंकार है, गरुण जी को भी अहंकार है। भगवान तो एक बार गरुण जी को ऐसा लीला किए कि गरुण जी को बिल्कुल काग भुसुंड के पास भेज दिए। पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ हैं गरुण जी और पक्षियों में सबसे निम्न जो है वो कौवा। तो काग भुसुंड के पास भगवान भेज दिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए गरुण जी को, वो कथा अलग है। इसलिए क्योंकि जो काग भुसुंड जी भक्त थे, गरुण जी भक्त हैं, लेकिन उनमें अहंकार आ गया था। भगवान सब सहन करते हैं लेकिन अहंकार को नहीं सहन करते हैं। एक छोटा कथानक बताऊंगा उसके बाद समाप्त करूंगा, कई एक बार बता चुका हूं। लक्ष्मी जी भी अहंकार आ गया था, कहने का तरीका अलग से है। एक बार संडे का दिन था, आज संडे है ना, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी पास संवाहन कर रही थी, यहां देख रहे हैं ना, तो भगवान विष्णु से कहती है कि प्रभु मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं और आप सृष्टि का पालन करते हैं, क्या बात है? तो भगवान ने कहा हां मैं भी ऐसा कुछ सुना हूं कि मैं पालन करता हूं। तो भगवान हां बोल दिए कि मैं पालन करता हूं जो आप कह रही हो सही बात है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तब बताइए इस सृष्टि में जिनको धन दौलत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, वो कहां से आता है? कहां से आता है? धन संपत्ति घर आए जय जगदीश हरे। वो धन संपत्ति की अधिष्ठात्री जो है वो है लक्ष्मी जी। तो उन्होंने पूछा भगवान से कि सब कहां से आता है? तो भगवान ने कहा आपसे आता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जब ये सब मेरे द्वारा आता है धन संपत्ति, तो आप मेंटेनर कैसे हो गए? लक्ष्मी जी का प्रश्न जायज था ना जी, जब मैं देती हूं धन संपत्ति जिसे सब लोग मेंटेन करते हैं अपने जीवन को, तो आप मेंटेनर कैसे हो गए? भगवान विष्णु का बात आपका बिल्कुल सही है, अभी हम देवताओं का मीटिंग बुलाते हैं और अभी आपको हम मनोनीत करते हैं, अभी आपको हम मेंटेनर करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु मजाक नहीं है, मैं सीरियसली बात कर रही हूं। तो लक्ष्मी जी उदाहरण देना चाहती थी, बिना उदाहरण के लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने भगवान शिव कहा चलिए हम लोग वॉकिंग करने चलते हैं, चलते हैं देखिए मैं कैसे मेंटेन कर रही हूं देखिए। तो गरुण पर सवार हुई लक्ष्मी जी भगवान के साथ में और जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक मुर्दा व्यक्ति था और उसको उसके घर वाले श्मशान घाट ले जा रहे थे। तो लक्ष्मी जी अपना प्रभाव दिखाना चाहती थी, कैसे वो जगत को मेंटेन करती है। तो मुर्दा को लेकर जा रहे थे और वहीं पर लक्ष्मी जी हाथ घुमाई, सोने के गिनियों का वर्षा होने लगा। यदि हम लोग होते तो क्या करते हैं? क्या करते हनुमान जी, आप क्या करते? पिताजी का शरीर खत्म हो चुका है, श्मशान घाट ले जा रहे हैं और लक्ष्मी का वर्षा हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? हनुमान जी सोच रहे हैं क्या कहूं, हनुमान सोचते हैं कि तो मर गया गया, जो मिल रहा है तो ले लूं, यही ना सोच रहे हैं ना। हम लोग प्राय यही सोचेंगे, भाई वो तो चला गया चला गया। तो क्या हुआ कि सब लोग मुर्दा को वहां डाल दिए, सब लक्ष्मी में डरने लगे और लक्ष्मी जी कहा देखा प्रभु, देखा मेरा प्रभाव? भगवान देख रहे थे, भगवान हंस रहे थे। तो लक्ष्मी जी का आप क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कैसे आप अधर्म का प्रचार कर रही हैं, मैं धर्म का प्रचार करने आता हूं और आप अधर्म का प्रचार, तो कहा इसमें अधर्म क्या है? तो कहा अधर्म यही है कि मृतक व्यक्ति को श्मशान घाट ले जाना चाहिए न कि बीच में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसे प्रोत्साहन मिल जाएगी। तो अधर्म नहीं तो और क्या है। तब भगवान ने कहा ठीक है, आपका माय मेंटेनेंस देख लिया, अच्छा किया। अब हमारे पास एक प्रश्न हो गया। तो लक्ष्मी जी बड़ी खुश हुई, चलो अब इनके पास प्रश्न है। तो भगवान ने कहा, मैं देखा जब आप लक्ष्मी, जब आप सोने का गिनी बरसा रही थी तो सब लोग बटर रहे थे, लेकिन जो मृतक व्यक्ति था वो क्यों नहीं ले रहा था? जब आप ही सबको मेंटेन कर रही हैं तो वो क्यों नहीं ले रहा था? अब तो लक्ष्मी जी का फोटो लेने जो चेहरा हो गया, मुंह लटका दी लक्ष्मी जी, तो बड़ी दुखी हो गई लक्ष्मी जी, कोई उत्तर नहीं था, लगी रोने। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, कहा लक्ष्मी जी ये मेंटेनेंस रुपया पैसा से नहीं होता है, ये जो मेंटेनेंस इसलिए होता है कि मैं वहां पर रहता हूं, यदि मैं नहीं रहूंगा तो संसार में सब मुर्दे हैं और आप कितना भी सोने का गिनी बरसाओ कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपको, जैसे मुर्दा नहीं पूछ रहा है ना, कोई नहीं पूछेगा। तो डोंट बी प्राउड, जो मेंटेनेंस है वह भगवान के चलते हैं, भगवान हमारे हृदय में है तब आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, इसे नहीं भूलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी में अहंकार आ जाता है और इन्हीं सब अहंकारों के चलते ये कहते हैं नवई रमया, रमया यानी लक्ष्मी जी को भी यह अनुग्रह प्राप्त नहीं है, यह अहेतुकी कृपा प्राप्त नहीं है, यन्मे अर्पिता जो आपने मुझे अर्पित किया है, जो आपने मुझे दिया है। तो भाव क्या मैंने दिया, कुछ दिया ही नहीं, तो शुरू हुआ है, अब भगवान पूछे क्या दूं। तो प्रहलाद जी कहते हैं शिरसि पद्म करो प्रसाद, एक कम है आपने अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रखा, ये क्या कम है, ये बहुत बड़ा कृपा है। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज जब भगवान को प्रणाम किए तो बिल्कुल अचंभित हो गए थे ध्रुव महाराज, वो प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन जय ही भगवान उनका स्पर्श किए सब ज्ञान आ गया। ठीक वैसे ही प्रहलाद महाराज भगवान को पेसिफाई करने के लिए गए थे, ब्रह्मा जी हार गए, लक्ष्मी जी हार गई, सब हार गए थे, और प्रहलाद जी आंख बंद करके सष्टांग दंडवत करते, जब उठे तो भगवान अपना हस्त कमल उनके सिर पर रखे और सब, तब ये सब ज्ञान आया। और ज्ञान के बाद प्रहलाद जी कितना सुंदर, पहले तो पेसिफाई किए हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था पेसिफाई करो, भगवान को मनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान आपके अवतार के कारण मेरे पिताजी थे, यह असुर था, अब तो यह मारा गया, तब तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपका काम खत्म हो गया, अब तो शांत हो जाइए। इस प्रकार से प्रहलाद जी भगवान को समझाए और इस प्रकार से गुणानुवाद किए और इन सब का क्रेडिट दे रहे हैं प्रहलाद महाराज भगवान को। तो इस श्लोक से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि हमें सदैव, हमारे पास आज जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी हैं, जैसे वॉचमैन जो कुछ भी बना था वो सेठ जी के चलते बना था, तो हमारे सेठ जी कौन है? हनुमान जी, श्री प्रभुपाद की, हमारे सेठ जी प्रभुपाद जी हैं, उनके कृपा से हम लोगों को सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रभुपाद जी को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोगों का जीवन भी सार्थक हो जाएगा जैसे प्रहलाद जी का जीवन सार्थक हो गया। हम भी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं, आज भी हैं, लेकिन सार्थक हो जाएंगे जो प्रभुपाद जी के कृपा को 100% आत्मसात करेंगे, 100% स्वीकार करेंगे। तब आज हम लोग 100% स्वीकार नहीं करते हैं, लेजीनेस आ जाती है, बहाना मिल जाता है, है? प्रभुपाद जी सिंपल फॉर्मूला दिए, फॉलो 4 एग्रीड प्रिंसिपल, चांट 16 राउंड एंड गो बैक होम बैक टू गॉड, फॉलो मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम, हियर भागवतम क्लास, गीता क्लास एंड रीड दिज बुक्स, यू विल गो बैक होम बैक टू गॉड। तो सिंपल चीज है, बहाना नहीं मारनी चाहिए मंगल आरती नहीं आने के लिए। माया बड़ी बहाना मारती है। एक भक्त है, वो जब मंगल आरती नहीं आता है, क्या मंगल आरती नहीं आया, तो कहा प्रभु जी अलार्म बजा, मैं उठा भी और सोचा दो मिनट बाद उठूंगा, और दो मिनट के बाद बम चला गया। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। मैं कहा कि ये नहीं समझते हो कि माया का प्रभाव है, ये माया करा रही है। वैसे ही कुछ भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी सिर दर्द हो गया, रात भर नींद आई और मंगल आरती के समय सिर दर्द हो गया। कुछ भक्त प्रभु जी डायरिया हो गई थी, रात भर आनंद से सोया और मंगल आरती में डायरिया हो गई, ये क्या बहाना। ये सब माया का प्रभाव है। हमेशा तैयार रहना चाहिए। माया हमेशा अवसर ढूंढती है कि इसको नीचे गिराऊं। तो प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त है, प्रभुपाद जी कहते हैं सूरज का कृपा प्राप्त है, कोई छाता लगा के चलेगा तो रोशनी कहां से मिलेगी, छाता हटाना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये बहाना बाजी का छाता हटाना पड़ेगा मंगल आरती, क्लास, गुरु पूजा, संध्या आरती में आने के लिए। तब हम लोगों को भी वही कृपा प्राप्त हो सकती है जो प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुई है, बल्कि प्राप्त है, प्रभुपाद जी के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है, वो छाता हटाना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? अभी प्रसाद नहीं है ब्रह्मचारी लोग, बैठो बैठो, थक जाते हो तुम लोग। यस।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला प्रणाम के विषय में, स्टार्टिंग में बोल रहे थे
क्या
प्रणाम करने के लिए, मतलब प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम लोग, हम वैष्णव से सुनते हैं कि हमें कृपा जो प्राप्त होता है प्रणाम के माध्यम से और प्रसाद के माध्यम से, तो हम लोग को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो भक्त नहीं है, जैसे रिलेटिव्स, पिताजी माताजी को प्रणाम किए, रिश्तेदारों को प्रणाम करते हैं, तो वो जो आशीर्वाद देते हैं,
हमें अपना काम करना चाहिए। हमारा काम है प्रणाम करना, ये हमारा काम है, उनका काम है आशीर्वाद देना। तो हम लोग प्रणाम करेंगे तो वे आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद हृदय से आता है और हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो आशीर्वाद वहां से आता है, और वह आशीर्वाद आपको फलीभूत करेगा जिस एरिया में आप हो। आप भक्ति के एरिया में हो तो वह आशीर्वाद आपको भक्ति के रूप में प्राप्त होगा। यदि आप धन कमाने के पीछे पड़े हो उसके रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि हृदय से आ रहा है। तो हमें अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए।
तो प्रभु जी मतलब जब वो देते हैं आशीर्वाद तो भौतिकता से रिलेटेड रहता है, और हम अगर मतलब वो आशीर्वाद देते हैं वो भौतिक जगत से ही रिलेटेड रहता है, और लेकिन हम भक्ति की कामना करते हैं तो
भगवान कभी भौतिक हो नहीं सकते हैं। जब दिल से आशीर्वाद आ रहा है, परमात्मा से आशीर्वाद आ रहा है, वो भौतिक नहीं हो सकता है, वो स्पिरिचुअल ही होगा। सुरुचि बहुत भौतिकवादी थी, प्रहलाद जी को आशीर्वाद, सॉरी ध्रुव को आशीर्वाद दिया और वही आशीर्वाद फलीभूत, भले गुस्से में दिया लेकिन आ गया। और कोई प्रश्न? हनुमान जी लंका से आ गए हैं, ठीक है, पूछ लो पूछ लो।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसा कि हम सुनते हैं कि अगर हम भगवान का दर्शन मात्र भी अगर कोई कर लेता है तो जो हम सुनते हैं कि अगर कोई भगवान का दर्शन मात्र भी अगर कर लेता है ना तो वो प्योर भक्त बन जाता है।
दूर से बोलो, भगवान का
जो दर्शन भी कर लेता है ना तो वो प्योर भक्त बन जाता है। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी तो भगवान की जो डायरेक्ट सेवा कर रही है, तो फिर उनमें जो अहंकार है वो क्या हमको सिखाने के लिए है या फिर उनमें वास्तव में उसको क्या समझेंगे हम?
इनका प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान और वैष्णव का दर्शन मात्र से ही कोई भक्त बन जाता है, पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी तो हमेशा सेवा करती रहती हैं, तो वो पवित्र क्यों नहीं होती है? क्या उत्तर है? आए? एनीवे,
इसका उत्तर यह है कि भगवान का कृपा समान रूप से सब पर विद्यमान है, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे आप हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, उनका कृपा सब पर बराबर रूप से है। लेकिन लेने की इच्छा किसमें कितना है, लेने की कितनी इच्छा है, यह देखना जरूरी है। जैसे उदाहरण में दिया, सूर्य का सब पर समान रूप से प्रकाश है, लेकिन हम छाता लगाएंगे तो कहां से प्रकाश प्राप्त होगा, छाता उतरना पड़ेगा। वैसे ही हमें उसको प्राप्त करने की कितना शक्ति है, जिसमें जितना प्राप्त करने की शक्ति होगा वो उतना ही मात्रा में शुद्ध होता है। और वैसे भी कभी कभी जो पत्नियां होती है ना, पति को डंडा भी मारती है, जानते हो ना, पति का सब लोग पूजा करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, सब लोग पति का पूजा करते हैं, ठीक है ना, और पत्नी कुछ ही बोल देती है, उसके लिए छूट है कभी कभी, तो अहंकार हो जाता है, मेरा पति है ना, मेरा पति है, मेरे पति के चलते अहंकार हो जाता है। तो लक्ष्मी जी को अहंकार था कि मैं नारायण की पत्नी हूं। भौतिक संसार में लोगों को थोड़ा गुण होता है, पत्नी को अहंकार हो जाता है, वो तो नारायण की पत्नी है तो कितना अहंकार होगा। एनीवे, भगवान का कृपा सबके लिए समान रूप है, ये रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रहलाद जी फर्स्ट क्लास रिसीवर थे, नारद जी के कृपा पात्र थे प्रहलाद जी, भगवान के विषय बचपन से ही सब कुछ जान गए थे, ठीक है, किस पर किसने कृपा है। तो इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को प्रत्येक दिन प्रार्थना करनी चाहिए गुरु वैष्णव साधुओं से, कि भगवान का जो कृपा मिल रहा है मैं उससे पवित्र हूं। प्रार्थना डेली अगर प्रार्थना करो, हम लोग नहीं करते हैं, हम करेंगे तो जरूर भगवान स्वीकार करेंगे। समय तो नहीं है, तो एक कथा मैं कहता है, वो भक्त का जानते हो ना, एक बार बाप चला गया, कहा बेटा है तो भगवान को भोग लगा देना, तो जानते हो ना, तो भगवान से कहा भगवान आप खाइए, भगवान खा ही नहीं रहे, तो हम लोग कैसे खाएंगे, आप नहीं खाओगे, गलती हो गया हमसे, क्या हो गया, अब खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो मैं फास्टिंग करूंगा, भगवान को आना पड़ा। तो उस प्रकार का भावना होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से बात कर सकते हो डेली, कितने बार बात करते हो, डेली बात करो कि भगवान आपकी वही कृपा है हम पर जो प्रहलाद महाराज पर था, लेकिन हम में शुद्धि क्यों नहीं हो रहा है, हमें अनर्थ कितने भरे हुए हैं, और भगवान ही शुद्ध कर सकते हैं, वैष्णव शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन करेगा।
हम जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र कहते हैं तो अष्टोत्तरस्ता श्री श्रीमद बोलते हैं, तो अष्टोत्तर को अच्छी तरह समझा दीजिए।
जो मैं प्रवचन में बोला हूं वही पूछो ना, इसके लिए अलग से बता दूंगा। हनुमान को
लास्ट कमेंट आएगा।
हनुमान जी को तो भाई बहुत देर से हाथ उठाए हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आप प्रवचन में बताए कि निर्धन होना एक पाप का फल है, जो पापी व्यक्ति है वो निर्धन है, और भागवत में भी एक जगह
पापी के पाप का कारण है,
पाप का कारण निर्धन होना है, और यस्य अनुग्रहामि हरिषे तद् धनं शने, और भागवत में भी बताया है कि भगवान जब विशेष अनुग्रह करते हैं तब उनका धन अपहरण करते हैं, तो कैसे समझा जाए।
अंतर इतना ही है भक्तों के निर्धन होने में और सामान्य लोगों के निर्धन होने में, कि भगवान जब भक्तों को निर्धन करते हैं तो सबसे बड़ा धन दे देते हैं, अपने को देते हैं। नमः अकिंचन वित्ताय, भगवान अकिंचन वित्त हैं, निर्धनों के वे धन हैं। तो ये भक्त लोग यदि भगवान खींच लेते हैं सब कुछ, जैसे बलि महाराज का सब लोगों को, तो रोना गाना नहीं शुरू करते, डिप्रेशन नहीं आता है। लेकिन संसारिक लोग भगवान धन खींच लेते हैं तो मर जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा। तो यही अंतर है भक्तों में और संसारिक लोगों में, दोनों निर्धनता में। सुदामा जी ने कभी कंप्लेन नहीं किया, बड़े आनंद में थे। भजन तो हो रहा है ना, भजन न होना सबसे बड़ा निर्धनता है और वह है पाप का कारण। पापी ही है जो भजन नहीं कर सकता है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मोहिनी इनकार्नेशन वर्शिपेबल क्यों नहीं है, और वो कौन से कैटेगरी का इनकार्नेशन, जैसे शक्त्यावेश अवतार या विस्तार स्वरूप, ये जरा विस्तार में बताइए।
शक्त्यावेश अवतार तो सर्टेनली नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं अवतार लिए थे, वो असुरों को मोहित करने के लिए भगवान आए थे, तो क्या कह सकते हैं, लीला अवतार, लीला करने के लिए भगवान किए थे। और जब मोहिनी के रूप से भगवान शिव दौड़ने लगे तो क्या आप नहीं दौड़ोगे, इसलिए पूजा नहीं की जाती है, बच कर रहो। भगवान वही मोहिनी के रूप संसार में है, जो सब संसार लोग दौड़ रहे हैं। कृष्ण में सबसे ज्यादा ब्यूटी है, वो मोहिनी से भी ब्यूटीफुल कृष्ण है, तो कोई दौड़ता नहीं, कितने दौड़ते हैं। आप समझ सकते हो कि मोहिनी में क्या शक्ति थी, मोहित करने की शक्ति थी। और कोई प्रश्न, माइक कहाँ है, माइक। चतुर्भुज दास सोने का गिनी लूट लिए हैं कुछ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने एक बहुत अच्छा कहा कि जैसे न्यू भक्त होते हैं उसके बाद ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो अपने आप वो भाव बढ़ता जाता है। प्रणाम करने की जो विधि आपने बताया ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को लड़ाई के मध्य में बहुत धिक्कारने लगा कि आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, तो वो दिन वो कंटाल के कह दिए कि कल मैं पांडवों का वध निश्चित कर दूंगा। ये भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि ये तो बुड्ढा ने प्रतिज्ञा कर लिया तो कल मार ही देगा, तो उनको बहुत चिंता हो गई। तो द्रौपदी को बुलाए, बोले आज चलना है शिविर में भीष्म पितामह के पास। तो द्रौपदी जी उनके साथ गई, तो कहे क्या करना है, तो कहे जाके खाली प्रणाम कर दो। तो जा करके उन्होंने, द्रौपदी जी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, तो उन्होंने कह दिया कि सौभाग्यवती भाव,
सुहागिन रहो,
सुहागिन रहो। तो कहने के बाद तुरंत भीष्म पितामह को लगा कि अरे मैं तो अभी प्रतिज्ञा किया था कि सुबह मार दूंगा इनको, अभी फिर हमने ये कोई चाल है इसमें। तो द्रौपदी से पूछे कि कैसे आई आप यहाँ, तो अकेले आ गई, तो बोले नहीं कृष्ण है बाहर खड़े हैं। ओ इनकी कला है ये, तो चलो ठीक है, हमारी कितना बार प्रतिज्ञा तोड़वा रहे हैं, तो एक बार अब इनकी मैं भी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। तो बोले कि ठीक है आप चलिए, कल मैं आपकी भी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। तो ऐसे बाण की वर्षा की अर्जुन के ऊपर, और भगवान को बचाने में भगवान को भी लग रहा था, तो भगवान को अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा थी, तो रथ का चक्का लेके दौड़े। तो तब उन्होंने भीष्म पितामह ने कहा बस बस मैं यही देखना चाहता था। तो प्रणाम में इतनी शक्ति है कि जो उस दिन विधवा होने वाली द्रौपदी प्रणाम करने से विधवा होने से बच गई। तो प्रणाम करने में कातर नहीं बनना चाहिए, प्रणाम करने से हमारा भाव बढ़ता है और बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं होना चाहिए, कभी अहंकार में नहीं होना चाहिए, अब तो मैं बड़ा हो गया आपकी उम्र करूं ऐसा, सबको प्रणाम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सीख मिला। हरे कृष्ण।
गुड, और कोई कमेंट क्वेश्चन।
हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण केशव प्रभु हैं, सेलम मंदिर से आए हैं, और आपने देखा होगा ये गोलोक चार्ट है, बहुत सुंदर पूरे सृष्टि का चार्ट बना है। तो प्रभु जी उसके बारे में थोड़ा कुछ दो चार मिनट बताना चाहते हैं।
हरे कृष्ण, हम साउथ इंडिया से आए हैं और गोलोक चार्ट, गोलोक चित्र लेके आए हैं। जैसे प्रभु जी ने अच्छे तरह से बताया, हम लोग का निज धाम है बैक होम बैक टू गॉडहेड गोलोक धाम जाना। तो ये चित्र इस्कॉन में पहली बार है, जो पहला जो भक्तों के पास था वो इस्कॉन से नहीं था। अभी गोकुल चंद्र प्रभु ने ये चार्ट को बनाया है। ये चार्ट जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, गोलोक धाम, वैकुंठ और भौतिक जगत के बारे में